نحمده ونصلي إلى رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. إن شاء الله تعالى آج ہم سورة آل عمران آیت نمبر 59 سے 71 تک کریں گے. جیسے کہ آپ نے لاسٹ سبق میں دیکھا، ہم پڑھ رہے تھے کہ کیسے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو ایک زبردست بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نوازنے والا ہے، اور وہ بیٹا کیسا ہوگا، اس میں کیا خوبیاں ہوں گی، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. پھر موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہم نے دیکھے کہ کون کون سے معجزات موسیٰ علیہ السلام لے کر آئیں گے، اور انہوں نے دکھائے وہ معجزات، ہم نے ان کی تفصیل پڑھی تھی. پھر اس کے بعد ہم نے حواریوں کی بات پڑھی، اور دلچسپ بات تھی حواریوں کی، کیونکہ وہ اتنے سنسیئر تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد بھی انہوں نے اتنی قربانیاں دی، ان کو بڑا ٹارچر کیا گیا، مگر وہ اپنے دین سے نہیں ہٹے. پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا پورا اٹھا لیا. متوفی کا لفظ آیا ہے، توفع یا توفی سے ہے، جس میں پورا پورا لے لینا. اس میں یہ نہیں مانا بنتا کہ جو بعض لوگ سوچتے ہیں کہ فوت ہونے کا معنی ہے، اس کے اندر فوت ہونے کا معنی نہیں بنتا. اس میں آپ لکھ سکتے ہیں یہ دلیل اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، صاف الفاظ ہیں، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا نہ سولی چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کو اللہ نے شبہ میں ڈال دیا. اب ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ واقعی کیا بات تھی، حقیقت کیا تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک حواری کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دی گئی، اور اس کے بعد وہ سولی چڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو عیسیٰ نہیں ہے، شکل عیسیٰ کی ہے، جسم کسی اور کا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا پورا اٹھا دیا، اور واضح احادیث تواتر کے ساتھ ملتی ہیں، اتنی کثرت سے احادیث ہیں. ایک تو میں نے آپ کو یہ آیت بھی بتا دی، اور کثرت سے احادیث اس بارے میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور یہاں پہ بتا دیا گیا رافعوں کا، اور اٹھا لینے والا ہوں تجھ کو، اللہ تعالیٰ بلند کر دیں ان کو فزیکلی بھی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کے لیے عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے. یاد رکھیے، جو رسولوں کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، جو قومیں جنہوں نے بھی انکار کیا رسولوں کا، ان کے اوپر عذاب آئے. آپ دیکھ سکتے ہیں قوم نوح، قوم لوط، قوم عاد، قوم ثمود، تو ان کے اوپر بڑے بڑے عذاب آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انکار کیا مشرکین مکہ نے، تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے اوپر ویسا عذاب تو نہیں آیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں کہ آپ کی امت کے اوپر ایسا عذاب نہ آئے جیسے پچھلوں کے اوپر آیا. لیکن بدر میں پھر ان کے بڑے بڑے لوگ مارے گئے تھے. اور عذاب ضروری نہیں ہوتا کہ اجتماعی عذاب بھی آئے، انفرادی عذاب بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہود کے ساتھ بھی اسی قسم کے معاملات رہے ہیں، ان کو کافی زیادہ ان کے اوپر مصیبتیں آئیں. ان کا جو بیت المقدس تباہ کر دیا گیا تھا 70 عیسوی میں، 1 لاکھ سے زائد یہودی ہلاک کر دیے گئے تھے، ان کا ہیکل گرا دیا گیا تھا، اور ان کو بھگا دیا گیا تھا اپنی جگہ سے، یہ پھر دنیا میں تتر بتر ہو گئے. اب یہ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نقشہ، تو آپ سوچتے ہوں گے کہ اب ان کو عذاب تو نہیں، ہٹلر کے دور میں اس نے بہت ان کو قتل عام ان کا کیا، 60 یعنی 6 ملین 60 لاکھ یہودی جو ہے نا اس نے ختم کیے تھے. हलाक किए थे। तो ये अजाब जो आते हैं ना, इनकी कोई वजह होती है, ऐसे नहीं आते। हमें ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि कुरान हमें बताता है। हाँ ठीक है, उसका जुल्म था, उसको उसकी अल्लाह के यहाँ पूछ होगी, जिस जिसने भी जुल्म किया, लेकिन वो जुल्म की जो ढील मिल रही थी उसको भी करने की, तो कोई पीछे वजह थी ना। वो इनके ये काम है जिन जो वजह बने, तो अल्लाह ताला ने बता दिया कयामत के दिन तक इनके लिए जो है ना ये सजाएं रहेंगी, दुनिया में भी रहेंगी और आखरत में भी इनको सजा मिलेगी। तो रसूल का इनकार करना छोटी बात नहीं होती क्या? तो अब जो ये सारा आप इनका देख रहे हैं, इनकी तरक्की या इनका एक जगह का मिल जाना, उसकी वजह ये है कि अब कयामत का कुर्ब है ना, और दज्जाल के आने की तैयारी है। जाहिर है इनके पास कोई जगह होगी तो सबसे ज्यादा ये दज्जाल के साथ खड़े होने वाले होंगे, ये उसके सपोर्टर्स होंगे। अगर ये खुद ही सही नहीं होंगे या खुद ही इनकी हालत कुछ नहीं होगी तो फिर कैसे सपोर्ट करेंगे? तो ये उसका साथ देने वाले हैं। और ईसा अलैहि सलाम जब आएंगे दोबारा दुनिया में तो तब भी इनको कत्ल किया जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये दिजाल की पार्टी के होंगे ना लोग। और जो ईमान वाले हैं और साले अमल करने वाले हैं, अल्लाह ताला उनको पूरा पूरा अजर देगा। अल्लाह जुल्म को नहीं पसंद करता, उससे मोहब्बत नहीं करता। ये क्यों यहाँ पे कहा गया? इसलिए कि जब हम कहते हैं ना अल्लाह पूरा पूरा अजर देगा, तो किसी के दिल में कभी ये बात ना आए कि हो सकता है मेरी फलां चीज उसका ना कोई अजर मिले, मेरे फलां मैंने काम किया था उसका, या ऐसे कोई अल्लाह को नाउज़ बिल्ला को भूल गया हो या इस तरह के काम। नहीं, अल्लाह ताला तो जालिमों से, जालिम कौन होता है जो किसी का हक मारे? अल्लाह जालिमों से मोहब्बत नहीं करता, उसको जालिम पसंद ही नहीं है, तो वो खुद क्यों जुल्म करेगा जब वो किसी किस्म के जुल्म को भी पसंद नहीं करता। और ये आयते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, और ये जिक्र हकीम है, यानी जिक्र मीन्स रिमाइंडर, जिक्र मीन्स नसीहत। और हम सबको रिमाइंडर्स चाहिए थे। वैसे हम अपने आप को कहते रहते हैं कि हम सभी शिकायत करते हैं कि हमें निसियान की बीमारी है, हम भूल जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम रिमाइंडर ही नहीं लेना चाहते। मानते हैं कि हम भूलते हैं, तो जितना भूलता है उसको तो उतना ही रिमाइंडर चाहिए होता है ना। तो ये कुरान है रिमाइंडर, ये बार बार आपको याद दहानी करेगा और हिकमतों से पूर है। आज की जो आयात है ना उसी की कंटिन्यूएशन है, मगर थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल से आप इसको समझेंगे। एक तो दावत कैसे देनी है, खास तौर पे अहले किताब को, ये हमें समझ आएगी, और तौहीद की हमें समझ आएगी कि तौहीद क्या होती है, ठीक है? तो एक दावती अंदाज है इसमें। और ये याद रखिएगा कि ईसा अलैहि सलाम के जो ईसाई उनको उनके बारे में अकीदा रखते थे, वो अकीदा कितना बोगस था और वो किस तरह से उनको उनके शिर्क का रद्द किया गया, वो यहाँ पे बताया गया है। आप देखते हैं कि इन्होंने ईसा अलैहि सलाम के बारे में तरह तरह की बातें निकाल ली। वो हवारी तो सही दीन पे थे, लेकिन बाद में एक बादशाह आया और उस बादशाह ने इनके दीन में ये सारी जो आज आप देख रहे हैं ना चीजें, खिंजीर का खाना, सूद, और यही शिर्क, सबसे पहली तो शिर्क की बात है, ये सब चीजें उसने शुरू कराई थी। बाज जगह पे इसका रीजन ये दिया गया है कि वो बादशाह जो था वो एक एजेंडे के थ्रू आया था इस दीन में, और उसने चाहा था कि वो इस दीन के अंदर खराबी पैदा करे। अब उसने एक सोची समझी साजिश के तहत ये चीजें इंट्रोड्यूस कराई। उसी ने ये जो आप देखते हैं गिरजों में, इनमें आप तस्वीरें देखते हैं या स्टैचूज देखते हैं या ये चीजें देखते हैं, ये उसने शुरू कराई। उसी ने ये सुअर को हलाल किया और उसी ने इनके सारे दीन की शक्ल बिगाड़ के रख दी। बाज जगह पे ये भी आता है कि एक बादशाह बाद में आया था, जब इन्होंने दीन फैलाने की कोशिश शुरू की तो उस वक्त ये दीन ने इस शरीयत मूसवी जो थी ये बड़ी लोगों को मुश्किल लगती थी। अब उन्होंने कहा जब हम दीन फैलाएंगे तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लोग कहेंगे अच्छा हमें ये करना पड़ेगा ये, जैसे आज आप मसलन तबलीग के लिए जाते हैं, आप अगर कहते हैं आपको 5 नमाजें भी पढ़नी है, आप शराब भी नहीं पी सकते, आप किसी के आगे नहीं झुक सकते, आप किसी के ऊपर नहीं तवक्कल कर सकते, आप ये नहीं, तो वो दूसरा कहता है अच्छा इतने रोजे इतनी नमाजें हज भी है जक़ात भी देनी है फलां भी कर, ये तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने शरीयत जो मूसवी थी ना वो कहीं ज्यादा मुश्किल थी, उन्होंने कहा सारी को ट्विस्ट करो सब ठीक कर दो, तो उन्होंने सब चीजें जायज कर दी और उस तरह ईज हो गई उनके लिए, लेकिन सारे दीन का हुलिया बिगड़ गया। तो ये भी बाद वालों ने किया। तो इस तरह से इन्होंने जो आज आप दीन देखते हैं ना ये ऐसे नहीं था, अल्लाह की तरफ से तो जो सही दीन आया था उसके बाद ये चीजें शुरू हुई, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से ये चीजें इनके अंदर आई। बड़ी सारी फिर उन्होंने कानून ईजाद किए, जाहिर है जब ऐसी चीजें होती हैं तो फिर खुली छूट मिल जाती है, जो मर्जी आके आगे से आगे फिर करता रहता है। तो अब इनका जो एक आर्ग्यूमेंट था ना कि ईसा अलैहि सलाम को इन्होंने कहा कि वो खुदा का बेटा है, नऊज़ु बिल्लाह, या तीन में तीसरा है कि खुदा है एक ईसा अलैहि एक मरियम है, तो थर्ड वन वो है। अब खुदा को तो मान रहे हैं लेकिन साथ उसका बेटा बना दिया, या साथ उसको तीन में तीसरा कह दिया, या फादर सन और होली गोस्ट कह दिया इस तरह से, तो ये क्यों उन्होंने कहा? उन्होंने कहा इनका बाप कोई नहीं है और इनका बाप वो ही है, क्योंकि ये मरियम के बेटे हैं तो बाप कहाँ गया, तो बाप फिर नऊज़ु बिल्लाह के उन्होंने कहा कि वो अल्लाह ताला है। तो उनकी इस आर्ग्यूमेंट का जवाब दिया गया, इन्ना मसल ईसा इंदल्लाह कमसल आदम, बेशक मिसाल ईसा अलैहि सलाम की अल्लाह के नजदीक आदम की तरह है। आदम को नहीं तुम देखते, क्या कैसे आदम की मिसाल है? आदम की मिसाल इस तरह है कि आदम अलैहि सलाम को देखें बगैर माँ और बाप के पैदा हुए, ना उनकी कोई माँ थी ना बाप था, तो वो भी तो पैदा हुए, अल्लाह ने जैसे उनको पैदा किया, खलकहुम मिन तुराबिन, उनको पैदा किया मट्टी से, सुम्मा क़ाला लहू कुन फयकून, फिर उनसे कह दिया हो जा तो हो गए, तो अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? जैसे हमने पहले भी बात की थी कि अल्लाह ताला जब किसी चीज का इरादा फरमाता है तो उसके लिए कुन कहता है, बस वो हो जाती है चीज, तो वो जीते जागते इंसान बन गए। अब एक अल्लाह के हुक्म के ऊपर, ना उनकी कोई माँ थी ना बाप था, कोई नहीं था, वो चलते फिरते उठते बैठते देखने वाले एक इंसान बने, तो ईसा अलैहि सलाम की तो माँ थी, एक जुज़ी मिसिंग है ना, उनके तो दोनों ही मिसिंग थे, तो क्या उनसे फिर तो उनको कहना चाहिए कि वो नाऊज़ बिल्लाह को खुदा के बेटे हैं, उनको तो मानते हो, लेकिन ईसा अलैहि सलाम पे आने पे क्या हो जाता है? देखिए बहुत ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है और ये बातें आपको अजबर याद होनी चाहिए, क्योंकि खास तौर पे वो लोग जो उन मुल्कों में रहते हैं जहां पे क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस की जाती है, अगर आपको ये बातें ही नहीं पता है ना तो फिर आप ना जवाब से हो जाते हैं कि आप इसका क्या जवाब दिया जाए, आपके सिर्फ नो कहने से कि नहीं ये तुम्हारा गलत अकीदा है ये बात नहीं बनती जब तक लॉजिक ना हो। अब देखिए इसमें कितनी जबरदस्त लॉजिक है कि ये बताओ कि तुम ये कैसे फिर कह सकते हो। तो ये बड़ी जबरदस्त तरीके से उनकी इस अकीदे को निगेट किया गया कि आदम अलैहिस्सलाम को देख लो वैसी पैदाइश इनकी है और अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है ऐसे पैदा करना किसी को। देखिए उसने बिन माँ बाप के आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, बिन माँ के हव्वा को पैदा किया, हव्वा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा हुई थी, तो एक तरह से उनकी माँ नहीं है लेकिन उनका एक जुज है, और फिर आगे ईसा अलैहिस्सलाम बिन माँ बाप के और बाकी सारे इंसान माँ बाप के साथ, तो हर तरह से अल्लाह ने पैदा करके दिखा दिया कि कोई चीज उसके लिए नामुमकिन नहीं है। अल्हक्कु मिन रब्बिका, हक तेरे रब की तरफ से है, हक अल्लाह की तरफ से ही मिलता है। जो हक की तलाश में है ना, वो अल्लाह ताला से हक बात ले। और अल्लाह की तरफ से हक क्या है? ये कुरान, ये हक क्या है? ये सच है। अब नजरान का वक्फा सोचे, ये बातें सुन रहा है, ये बात हक है कि इसी तरह ईसा अलैहि सलाम की मिसाल है। फला तकुम मिनल मुमतरीन, आप शक करने वालों में से ना हो जाना। फला तकुन, तू सिंगुलर है, तुम ना हो जाना। तो देखने को तो ऐसे लगता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है और उनसे ही कहा जा रहा है, लेकिन सुनाया बाकी सबको जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शक करने वाले नहीं थे, लेकिन बाकी दुनिया को सुनाया जा रहा है कि देखो कहीं तुम इस मुगालते में ना पड़ जाना। क्योंकि तो बड़े आर्ग्यूमेंट्स देते थे, बड़ी बातें करते थे, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं। आपके पास हक है, और जो हक लेना चाहता है वो अल्लाह से हक ले, क्योंकि सच्चाई अल्लाह की तरफ से है। लोगों की सोच, उनके नजरियात, उनकी जो बातें हैं, उनसे इन्फ्लुएंस ना हो जाएं। उनसे इन्फ्लुएंस होंगे तो भटक जाएंगे। आपको पता है ये लोग बहुत तरीके के साथ तबलीग करते हैं क्रिश्चियंस, और बाज दफा ऐसे मुसलमान जो के इतने ही कच्चे होते हैं कि बस उनको ना अपने दीन का कुछ पता होता ना कुछ है, वो भी इनकी बातों में आ जाते हैं। इनका अंदाज जो होता है ना, वो बड़ा ही जबरदस्त किस्म का, बड़ा प्यार मोहब्बत से और बड़े तरीके से। आर्ग्यूमेंट इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास ठोस बात कुछ नहीं है। इनका तो देखें बेसलेस हो गया ना, जिस चीज के ऊपर इनके दीन की इमारत खड़ी भी है कि जीसस हैं जो कि वो खुदा का बेटा, इसी के ऊपर तो खड़ी भी है ना, वो उन्हीं को पूजते हैं, उन्हीं के आगे सजदे करते हैं, उन्हीं के स्टैचूज बना बना के उसके आगे दुआएं करते हैं, उन्हीं के गुण गाते हैं। तो ये तो बात ही खत्म हो गई जब ये कि ईसा अलैहि सलाम कैसे बेटे हो सकते हैं खुदा के, और खुदा का बेटा जब कह दिया तो फिर सारी चीजें उन्हीं से मनवानी है, क्योंकि वो मान गए तो खुदा मान गए। दूसरी चीज ये कि ये सोचने ना कि वो सूली पे चढ़ गए थे और उन्होंने सूली पे चढ़ के हमारे सारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए, अब क्यामत के दिन हमारी कोई पूछ नहीं होने। उन्होंने हमारे गुनाहों का बस, उन्होंने उनका जो सूली चढ़ना था ना, वो हमारे गुनाहों का बस कफारा हो गया। कोई खुदा के बंदो, कोई लॉजिक, लॉजिक आगे बात आएगी, अकल करो अकल। दुनिया में भी नहीं तुम ऐसा इंसाफ करते कि गुनाह किसी ने किया हो और पकड़ लो तुम किसी इनोसेंट को। तुम मानते हो ना वो इनोसेंट, तुम मानते हो कि वो नेक रूह थे, तुम मानते हो कि वो पाक थे, तो ये कैसी बोगस बात है कि वो जो एक पाक हस्ती है वो सारे गुनाहगारों का अपने ऊपर ले और वो तकलीफ उठाए सबकी। और कभी इंशाल्लाह जिंदगी रही तो हम सूरह माईदा में जिस तरह से पढ़ेंगे ना, जैसे अल्लाह ताला उस दिन ईसा अलैहि सलाम से पूछेंगे, अंत कुलता लिन्नास इत्तखिदूनी व उम्मी इलाहैन, क्या आपने कहा था कि मुझे और मेरी माँ को खुदा बना लो? ईसा अलैहि सलाम कहेंगे अल्लाह नहीं, मैंने नहीं कहा था। सुभानक, तू पाक है। वो तो कितना घबरा जाएंगे कि मेरे ऊपर इनकी वजह से बात आ गई। तो ये छोटी बात नहीं है जो ये कहती है, ये अल्लाह को गाली देना है, उसकी औलाद ठहराना। फमन हाज्जक फीह, तो जो कोई झगड़ा करे आपसे, यानी इसके बाद भी अगर ये नहीं मानते, इनको सारे दलाइल दे दिए गए, इनको बता दिया गया, लेकिन अगर ये फिर भी नहीं मानते तो अब ये मुबाहले की दावत है। मुबाहला क्या होता है? मैंने जैसे आपको बताया इसमें नबताहिल के अंदर कि ये बद्दुआ करना, और बद्दुआ में क्या कहा जाएगा कि अल्लाह की लानत हो झूठे पे। अब ये यहां पे यही कहा गया, तो फिर अगर वो झगड़ते हैं आपसे, यानी अब वो फिर भी नहीं समझते बात को, इसके बाद कि जाक मिनल इल्म, आपके पास तो इल्म आ गया, आपको तो पता है, आपको तो समझ है, फिर भी ये आपसे झगड़ते हैं किस बारे में? फी ही, इसके बारे में, किस में? ईसा अलैहि सलाम की हकीकत के बारे में। तो ऐ नबी आप इनसे कह दें, फकुल कह दीजिए, तालो आ जाओ, फिर ندعو ابناءنا وابناءكم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا ونساءكم، اور ہم اپنی عورتوں کو بلائیں اور تمہاری عورتوں کو، انفسنا وانفسكم، ہم خود بھی آ جائیں اور تم بھی آ جاؤ، ثم نبتہل ہے، پھر ٹھیک ہے ہم ایک کھلے میدان میں نکلتے ہیں اور ہم بد دعا کرتے ہیں، کیا بد دعا، فنجعل لعنت اللہ الکاذبین، پھر ہم ڈالیں اللہ کی لعنت جھوٹوں پر، دونوں فریق کہیں کہ جو جھوٹا ہے اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر. اب آپ خود سوچیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی آ گئی بات، تو چلو اب ہم میں اپنی فیملی کو لے کر آتا ہوں، آپ اپنی فیملیز کو لے کر آؤ اور ہم جا کے کھلے میدان میں، اور اس طرح سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مباہلہ کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے اوپر بد دعائی کلمات کہتے ہیں. تو وہ تو سمجھ گئے اور وہ اس سے دستبردار ہو گئے. تھوڑا سا اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل دیکھتے ہیں. ایک جگہ پہ آتا ہے ابن کثیر میں کہ یہ وفد مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، عصر کی نماز سے فارغ ہو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے. یہ لوگ نفیس پوشاکیں پہن کے آئے ہوئے تھے، خوبصورت نرم چادریں اوڑے ہوئے تھے، ظاہر ہے بڑے مالدار تھے. ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بنو حارث بن کعب کے خاندان کے لوگ ہیں. صحابہ کہتے ہیں ان کے بعد ان جیسا شان و شوکت والا وفد کوئی نہیں آیا. یہ 9 ہجری کی بات ہے. ان کی نماز کا وقت آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے مسجد نبوی میں اپنے طریقے پر نماز ادا کی. بعد نماز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی گفتگو ہوئی. اب ہم تو اپنی مسجد میں آنے ہی نہیں دیتے کسی کرسچن کو، اگر آ جائیں تو بڑا مائنڈ کرتے ہیں کہ یہ کیوں آئے ہیں، چاہے وہ خطبہ سننے آئے ہیں چاہے وہ نماز میں آئے. حالانکہ دیکھیں وہ مسجد نبوی میں آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بات چیت کی. اچھا، اب یہ بات چیت جب کر چکے تو آپ نے فرمایا تو مسلمان ہو جاؤ. انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، تمہیں چاہیے کہ تم اسلام قبول کر لو. وہ کہتے ہم تو پہلے سے اسلام قبول کر چکے ہیں. فرمایا نہیں، تمہارا یہ اسلام نہیں ہے کہ تم اللہ کی اولاد مانتے ہو، یہ اسلام تھوڑی ہے، صلیب کی پوجا کرتے ہو، خنزیر کھاتے ہو. انہوں نے کہا اچھا، پھر یہ بتائیں عیسیٰ کا باپ کون تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور سورہ آل عمران کی شروع سے لے کے یہ دیکھیں ساری آیتیں آئیں. پھر یہ آیت مباہلہ کی آئی، سب تلاوت کر کے ان کو سمجھا دیا. پھر اس کے بعد مباہلے کی آیت کو پڑھ کے آپ نے فرمایا اگر تم نہیں مانتے پھر بھی تو آؤ مباہلہ کر لو، نکلو پھر میرے ساتھ. یہ سن کے وہ کہنے لگے ابو القاسم ہمیں مہلت دیجئے کہ ہم آپس میں مشورہ کر لیں، پھر آپ کو جواب دیں گے. اب تنہائی میں بیٹھ کے انہوں نے ایک ان کا جو بڑا تھا نا، آفتاب اس کا نام تھا، اس سے مشورہ کیا. بڑا وہ دانا تھا، بڑا عقل مند سمجھا جاتا تھا. اس نے اپنا حتمی فیصلہ ان الفاظ میں سنایا کہ اے جماعت نصارہ، تم نے یقین کے ساتھ اتنا تو معلوم کر لیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہ بھی تم جانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت وہی ہے جو یہ تمہیں بتا رہے ہیں. تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ جو قوم نبی کے ساتھ ملاعنہ کرتی ہے، یعنی یہ لعنت بھیجنے کا کام، نہ ان کے بڑے باقی رہتے ہیں نہ چھوٹے، سب کے سب جڑ سے اکھیڑ پھینک دیے جاتے ہیں. یاد رکھو، اگر تم نے مباہلے کے لیے قدم بڑھایا تو تمہارا ستیہ ناس ہو جائے. بس یا تو تم ان کا دین قبول کر لو، اور اگر کسی طرح نہیں ماننا چاہتے اپنے دین پہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنے ہی خیالات پہ قائم رہنا چاہتے تو ان سے صلح کر لو اور واپس چلو. تو جب انہوں نے یہ مشورہ کر لیا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہنے لگے اے ابو القاسم، ہم آپ سے ملاعنہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ اپنے دین پہ رہیں، ہم اپنے خیالات پہ رہتے ہیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ اپنے صحابہ میں سے کسی ایک آدمی کو بھیج دیں جن سے آپ خوش ہیں اور جو ہمارے مالی جھگڑوں میں ہمارے فیصلہ کر دیں. تو کیونکہ آپ ہماری نظروں میں بڑے پسندیدہ لوگ ہیں. آپ کو پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطوط بھیجے تھے نا تو ان کی طرف بھی خط بھیجے تھے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے مشورہ کر کے یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. تو انہوں نے اس طرح سے مخالفت نہیں کی تھی کیونکہ ان کو بڑی اچھی طرح پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. لیکن کیوں نہیں مانتے تھے پھر، کیا پرابلم تھا؟ پرابلم یہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، फिर हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। जाहिर है इनके बड़े उलमा पादरियों के पीछे लोग चलते हैं, बाकी लोगों की तो अपनी कोई इतनी अकल नहीं होती। लोग जो है ना कलाना आम होते हैं, आम लोग जो होते हैं बस उन मवेशियों की तरह होते हैं, बस एक आगे चल पड़ा तो उसके पीछे चल पड़ा। तो इन्होंने इस वजह से इनके उलमा ने नहीं माना, और सारा आज का लेसन इसी पे है कि क्यों नहीं तुम मानते, क्यों नहीं तुम मानते, वजह यही थी। हमारे अपना फिर क्या रहेगा, हम इनके अंडर आ जाए। आज हम इतने इतने हमारे ओहदे हैं, लोग हमें पूछते हैं, लोग हमारे पास आते हैं, हमें सारा कुछ छोड़ के हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं रहेगी। एक उम्मती, एक आम उम्मती होंगे फिर, वो जो बड़े मकाम मिले हमें, मिसाल के तौर पे जैसे आपके यहाँ हरम के इमाम हो, कितना बड़ा उनका मकाम है ना, इसी तरह इनकी ईसाइयत में वो बहुत बड़े थे। उनको छोड़ के अब ये सारे लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले जाएंगे और हम एक आम से मुसलमान बन जाएंगे, ये क्या बात हुई। तो बहुत दफा ऐसा होता है, इसी तरह उसके साथ भी हुआ था जो रोम का बादशाह था, कैसर रोम, वो समझ गया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत से और अबू सुफियान की बातों से कि ये सच्चे नबी हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, उसने कहा अगर मैंने इनको मान लिया मेरे तो ये मुखालिफ हो जाएंगे, मुझे स्टेप डाउन करना पड़ेगा अपनी बादशाहत से। दिल में वो मान गया हुआ था। तो कभी ये ओहदे, कभी ये पोजीशंस, कभी पावर, कभी अपने आप को मनवाना, ये चीजें होती हैं जो इंसान को हक से फेर देती हैं। और यही चीजें आज भी बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं कि वो क्यों अल्लाह के दीन को सही प्रैक्टिस नहीं करते। मेरी पोजीशन चली जाएगी, मेरी पावर मुझसे छूट जाएगी, मैं क्या मानी जाऊंगी लोगों में, मेरा क्या स्टेटस रहेगा। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आज लुक डाउन किया जाता है ना ऐसे लोगों को जो दीन पे चलने वाले। तो अपने आप को ऐसा रखो कि बड़े दुनियादार सा अपना आपको दिखाओ, बड़ा मॉडर्न सा दिखाओ, उसमें तुम्हारी इज्जत है। और उसमें तो असल सिक्योर किसको करना है फिर, अपने स्टेटस को, अपनी इज्जत को, ये इसमें इज्जत समझते हैं। फा इन्नल इज्जत लिल्लाही जमीआ, मोमिन का तो एक बात को समझ लेना, इज्जत सारी अल्लाह के हाथ में है। कोई नहीं मुझे बेइज्जत कर सकता, कोई मेरे से कोई ओहदा, कोई स्टेटस, कोई इज्जत छीनना चाहे नहीं छीन सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। लेकिन यही चीजें आज हमें भी, इतनी हम इनसे चिपके होते हैं ना कि हमें लगता है ये हमसे, हमारे हाथ से निकल जाएंगी। वो बोला कि हमारे पास कौन सी कोई पावर्स है, फिर भी हमारी हालत देखिए क्या होती। अगर ये कर लिया तो लोग कैसे देखेंगे मुझे, लोगों में मैं उतनी सराही नहीं जाऊंगी, अप्रिशिएट नहीं की जाऊंगी जैसे अब हूं मैं। जितने कम कपड़े पहनूंगी उतनी ज्यादा मैं अच्छी लगूंगी और लोग मुझे अप्रिशिएट किया करेंगे, उतनी मैं मानी जाऊंगी कोई चीज, उतनी मैं अप टू डेट नजर आऊंगी। देखिए ना, छोटी मिसाल है आपके सामने। देखिए हमारी ये इतनी सी चीजें हैं जिसके पीछे हम लुटे चले जा रहे हैं, अल्लाह के अहकामात को तोड़ते हैं, है ना, कि बस वो मुझे जो क्या देखेंगे। तो आप मुझे बताएं, अपने आप को भी तो रख के देखा करें ना आयतों के तनाजुर में, वो क्यों नहीं माने, उनके सामने हक आ गया था क्यों नहीं समझे। उनके पास तो भाई बहुत पावर थी, मेरे आपके पास क्या है, फिर भी हमारे पास जितना है ना उसके साथ ही चिपटे में, इतनी पावर आ जाती तो फिर पता नहीं क्या करते। इसलिए किसी ने कहा ना कि फिरौन, उसको बुरा भला तो बहुत कहते हैं, बहुत सारे लोग लेकिन ऐसे हैं कि उनको फिरौन जितनी पावर मिल जाती तो वही करते जो फिरौन ने किया। बुरा वो तो बहुत कह रहे हैं हम, मुलानते तो उसके ऊपर बड़ा भेजती, लेकिन करते वो ही। और इसी तरह इनके शूज में आके देखें, हम तो वो बड़े माने जाते थे। आप समझे, अब जैसे मैंने आपको बताया इमाम काबा हो जैसे कोई, तो उस तरह से इनकी पोजीशन, पावर, आगे पीछे लोग इनको समझते हैं बड़ी चीज, उनको नवाजते हैं, उनकी एक पावरफुल पोजीशन है, बादशाह तक इनको जो है ना रिगार्ड करता है। तो क्या रह जाएगा हमारे पल्ले, कुछ भी नहीं, सारा कुछ छोड़ छाड़ के उधर चल पड़े और जाके काम से आदमी बन जाए। तो समझे, समझे कि ये कितने बड़े फितने बन जाते हैं, ये माल, ये पोजीशंस, ये स्टेटसेस, ये लोगों का आपको आगे पीछे होना, ये कितने बड़े फितने बन जाते हैं बाज दफा। ये लोगों की तारीफें, ये लोगों का आपको कुछ समझना कि ये वाह भाई क्या बात है तुम्हारी, ये इतने बड़े फितने बन जाते हैं ना कि ये इंसान को हक मानने से दूर कर देते हैं। तो इंसान को ना वो थ्रेटन फील करता है कि अगर मैंने ये छोड़ के मैं किसी और तरफ गई ना तो ये सारा कुछ मुझसे छूट जाएगा, सब चीज मुझसे चली जाएगी। सेम बेटा, कोई अनोखी बात नहीं मैं आपको सुना रही। अल्लाह ने हमारे पर्दे रखे हुए बहुत, तो हमारे हाल कुछ अच्छे नहीं है वरना। तो जब उन्होंने, अच्छा अब वो करते क्या ना करते, वो तो अब फंस गए कि एक तरफ मोबाइल है का हमें कहा जा रहा है, दूसरी तरफ हमें हम क्या करें, हमने ये भी नहीं छोड़ना सारा कुछ। तो उनके पास एक ही सिर्फ रास्ता था कि मुबाहला ना करें, ओके हम अपने पे रहते हैं, हम अपने पे रहें, लेकिन ठीक है हम आपको जिजिया देते रहेंगे, हम आप वो आगे बात आएगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अहदनामा इनके लिए लिख के दे दिया था। ठीक है, तो अब ये हुआ क्या कि तो उस आदमी ने कहा कि हम अपने हाँ, इन्होंने अगले दिन जाके कहा कि आप अपने सहाबा में से हमारे साथ किसी को भेज दें जो आपकी नजरों में बड़ा पसंदीदा हो, तो वो हमारे दरमियान फैसले करते, क्योंकि आप लोग हमारी नजरों में बहुत पसंदीदा हैं, तो जिससे आप खुश हैं ना उसको भेज दें हमारे साथ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम दोपहर को आ जाना कल, तो मैं तुम्हारे साथ किसी अमानतदार को भेज दूंगा, मजबूत अमानतदार को। हजरत उमर फरमाते मैंने किसी दिन भी सरदार बनने की ख्वाहिश नहीं की, लेकिन उस दिन सिर्फ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ की ना कि मैं कोई मजबूत इमानतदार होगा जो तुम्हारे साथ भेजूंगा, तो जिसकी आपने तारीफ कर दी हो कि वो ऐसा होगा, उस दिन हजरत उमर की ख्वाहिश थी कि काश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सेलेक्ट करते, ओहदे के लिए नहीं, कि इतनी बड़ी उसकी गवाही आपने दे दी। कहते हैं उस दिन मैं जल्दी जाके जोहर की नमाज के लिए पहुंच गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, नमाज जोहर पढ़ाई, फिर दाएं बाएं नजरें दौड़ाने लगे, मैं बार बार अपनी जगह ऊंची होता जाता था ताकि आपकी निगाहें मुझ पे पड़ जाएं, लेकिन आप इधर उधर देखते रहे, यहां तक कि आपकी निगाहें हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह उन पे पड़ी। उनको बुलाया और उनके साथ रवाना किया कि जाएं आप जाके इनके खिलाफत का फैसला करें। इसीलिए अबू उबैदा बिन जर्राह को अमीन कहा जाता है, अमानतदार कहा जाता है सुन्नत का। तो जहां तक मुबाहले की बात रह गई, तो फिर जब इनको दावत दी थी ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले दिन अपनी फैमिली को लेकर, हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत अली, हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, इन सबको लेकर निकले थे, लेकिन वो लोग नहीं आए। और जिन्होंने ये जो जो ये वफद आया हुआ था, अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुबाहले के लिए निकलते तो वापस खैरियत से ना पहुंच सकते। ठीक है, एक इब्ने मरदबिया में रिवायत आती है कि उनके जो बड़े थे दो लोग आकिब और तैयब, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आपने उनको मुबाहले के लिए कहा, और सुबह को हज़रत अली और फातिमा और हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को लेके आप तशरीफ लाए और इन्हें कहला भेजा, उन्होंने कबूल नहीं किया और उन्होंने कहा हम आपको खराज दे देंगे। तो फिर आपने अहदनामा लिख दिया था कि हर साल आप इतना इतना दिया करेंगे, और आपने फरमाया उस जात की कसम जिसने मुझे हक के साथ भेजा है, अगर ये दोनों कहते कि नहीं हमने नहीं ना मुबाला करना है तो ना हमने जिजिया देना है, तो इन पर यही वादी आग बरसाती। ठीक है, तो ये छोटी बात नहीं होती। आज भी मुबाहला तो हो सकता है, मगर ऐसे नहीं है कि आप किसी भी बात के ऊपर खड़े होकर दूसरे को कहते नहीं, अब हमने आपको तो बता दिया बस आए आप मुबाहला के लिए, नहीं ऐसे नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में सिर्फ ये एक वन टाइम किया है, ये आयते मुबाहला कहलाती है, आपने एक दफा सिर्फ किया है जिंदगी में, और वो भी इस टाइम पे आके जिस वक्त के बिल्कुल सब कुछ वाजे हो चुका था, लेकिन वो फिर भी जिद पे अड़े हुए थे। तो बार बार नहीं, हर आए दिन के मुबाला करें या दो चार बातें बता के मुबाले के लिए बुला लें। बेशक ये अलबत्ता वो किस्से हैं सच्चे। ये जो सारी बातें आई हैं ना, चाहे वो हजरत मरियम की पैदाइश की थी, हजरत जकरिया अलैहि सलाम की, यहया अलैहि सलाम की, फिर ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश, फिर ये सारी बातें, सब सच्ची बातें हैं, ये सब सच है, ये हकीकत है। वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, कोई इलाह है ही नहीं सिवाय अल्लाह के, अल्लाह ही काबिल इबादत है, कोई और नहीं है। और ये बात हक और सच है। जो ईसा अलैहि सलाम की बातें हैं जो अल्लाह ताला ने बयान की, वो हक और सच है, उनमें बाल बराबर भी कोई कमी बेशी नहीं है। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह की जात है, क्योंकि वो ही, वह इन अल्लाह लहू अल अजीजुल हकीम, बेशक अल्लाह वो ही है गलबे वाला, इज्जत वाला और हिकमत वाला। तो वो हकीम है, हिकमत वाला है, और अथॉरिटी उसके पास है, पावर उसके पास है। फइन तवल्लव, फिर अगर वो मुंह मोड़ जाए, वो फिर भी ये बातें नहीं मानते, फइन्नल्लाह अलीमुन बिल मुफ्सिदीन, तो अल्लाह ताला जानने वाला है फसाद करने वालों को। अल्लाह ताला को पता है कि फसादी कौन है। फसादी किसको यहाँ पे कहा गया आपको पता है ना, शिर्क तो सबसे बड़ा फसाद है। और ये लोग जो इनके बड़े थे, जो आए थे इतनी शानो शौकत के साथ, जिनके पास ये पावर थी, लोग इनकी बात सुनते थे, जो ये कह देते थे ना लोग सुनते थे, लोग कहते थे हमें मंजूर है। अगर सोचें, ये नहीं मानते, ये शिर्क पे अड़े रहते हैं, तो इसका नतीजा क्या होता? सब लोग इनके पीछे ही चलने थे। और इन्होंने फैसला क्या किया कि हम शिर्क पे रहेंगे, जिससे कितना बड़ा फसाद है जो कि क्रिएट हुआ, कि जितने फॉलोअर्स थे इनके वो सब पे शिर्क पे कायम रहे। ये कितना बड़ा फसाद है, क्योंकि जब इनके पास पावर है, ये नहीं मानेंगे तो लोग भी नहीं मानेंगे, अगर ये मान जाते तो सब लोग मान जाते। तो टॉप पे कौन हुए? ये हैं जो कि मुंह फेरने वाले सबसे पहले। तो अगर वो मुंह मोड़ जाते हैं, तो इनका मुंह मोड़ जाना सिर्फ इनके अपने खसारे का बायस नहीं है। बाज लोग इतने इन्फ्लुएंशियल होते हैं, इतने उनकी से होती है लोगों के अंदर, इतने लोग उनको पसंद करते हैं, कि अगर वो किसी तरह ड्रेसअप होते हैं, लोग वैसे ड्रेसअप होते हैं, वो जैसे बाल बनाते हैं लोग वैसे बाल बनाते हैं, वो जिस तरीके से चलते हैं लोग वैसे चलते हैं, और वो जो दीन अपना लेते हैं लोग भी उनके पीछे चल पड़ते हैं, जो उनके मानने वाले होते हैं। ऐसा ही है ना दुनिया में। तो इन लोगों के लिए भी यही था। ये है फसाद, फिर ये इस्लाह नहीं है।